ये है क्विंट हिंदी की खास पॉडकास्ट सर्विस और आप सुन रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। खबरों के डेली डोज के साथ मैं हूँ शादाब मोईजी। केरल में भारी तनाव के बीच सबरीमाला मंदिर के दरवाजे आज से सभी उम्र की महिलाओं के लिए खुल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद मंदिर में महिलाओं की एंट्री हो पाएगी या नहीं, अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि महिलाओं की एंट्री को लेकर अयप्पा के अनुयायी जबरदस्त विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे देखते हुए भारी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई है। मंदिर में बुधवार से सालाना पूजा शुरू हो रही है। बड़ी संख्या में महिलाएं दर्शन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने महिलाओं को बसों से घसीट कर उतार दिया। बता दें कि इस मंदिर में 10 से 50 साल की लड़कियों और महिलाओं की प्रवेश पर पाबंदी थी, लेकिन 28 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सबरीमाला में सभी उम्र की महिलाओं की एंट्री की इजाजत दे दी। सबरीमाला मंदिर में हर उम्र की महिलाओं की एंट्री का विरोध करने वालों ने सामूहिक आत्महत्या और तोड़फोड़ की चेतावनी भी दी है। महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने का तर्क है कि श्री अयप्पा को ब्रह्मचारी और तपस्वी माना जाता है, इसलिए मंदिर में मासिक धर्म की उम्र वाली महिलाओं का जाना गलत है। मंदिर ट्रस्ट का दावा है कि यहां 1500 साल से महिलाओं की एंट्री पर बैन है। हिसार की स्पेशल कोर्ट ने सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल और उसके बेटे विजेंद्र समेत 15 लोगों को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने रामपाल पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। साल 2014 में रामपाल के आश्रम में छापेमारी के दौरान पुलिस और रामपाल के समर्थकों में टकराव हुआ था, जिसमें 6 लोग मारे गए थे। रामपाल ने करीब 23 साल पहले सिंचाई विभाग में बतौर इंजीनियर की नौकरी से इस्तीफा दिया और सत्संग करने लगा। आर्थिक अपराधियों पर नकेल कसने की दिशा में भारत को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बैंक धोखाधड़ी के 7 मामलों में भगोड़ा कारोबारी विनय मित्तल को इंडोनेशिया से भारत लाया गया। मित्तल का नाम भगोड़े आर्थिक अपराधियों की लिस्ट में टॉप भगोड़े में शामिल है। इस लिस्ट में विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी और जतिन मेहता जैसे भगोड़े आर्थिक अपराधियों के नाम हैं। सीबीआई ने कॉरपोरेशन बैंक और पंजाब नेशनल बैंक की शिकायत के बाद 2014 और 2016 में मित्तल के खिलाफ मामले दर्ज किए थे। इसके बाद वो देश से भाग गया था। देश की राजधानी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने में नाकाम रहने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। एनजीटी ने यह आदेश तब दिया है जब दिल्ली सरकार रिहायशी इलाकों में मौजूद स्टील पिकलिंग यूनिट, मतलब स्टील से गंदगी दाग जंग हटाने वाली यूनिट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। एनजीटी के मुताबिक रिहायशी इलाकों में स्टील पिकलिंग यूनिट मास्टर प्लान 2021 के हिसाब से सही नहीं है। एनजीटी ने तत्काल प्रभाव से इस यूनिट को बंद किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो 3 सदस्यों वाली एक कमेटी बनाए और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करे और उसके बाद ट्रिब्यूनल को रिपोर्ट सौंपे। आयरलैंड की राइटर एना बर्न्स को उनकी किताब मिल्कमैन के लिए मैन बुकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये किताब एक लड़की की दर्द भरी दास्तां है जो ताकतवर लोगों के हाथों में शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होती हैं। भारत की अरुंधति राय को 1997 और अरविंद अडिगा को 2008 में मैन बुकर प्राइज से नवाजा जा चुका है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने जनरल प्रोविडेंट फंड मतलब जीपीएफ पर मिलने वाले ब्याज दर में 0.4% की बढ़ोतरी की है और इसे अब 8% कर दिया गया है। नई दरें अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए लागू होंगी। ये दर पब्लिक प्रोविडेंट फंड पीपीएफ के बराबर है। इससे पहले जीपीएफ पर जुलाई सितंबर तिमाही में 7.6% की दर से ब्याज मिलता था। ब्याज दर केंद्र सरकार के कर्मचारियों, रेलवे और सुरक्षा बलों के प्रोविडेंट फंड पर भी लागू होगी। इससे करीब 50,00,000 कर्मचारियों को फायदा होगा। अब हमारे इस पॉडकास्ट को लेकर आपके पास कोई सजेशन हो तो आप हमें hindi@thequint.com पर लिख सकते हैं। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए क्विंट हिंदी के साथ।